Ladies and gentlemen, good day and welcome to GR Infra Projects Limited Q2 H1 FY26 earnings conference call hosted by HDFC Securities Limited. This conference call may contain forward-looking statements about the company, which are based on beliefs, opinions, and expectations of the company as on the date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. We have the management from GR Infra Projects Limited, Mr. Ajendra Kumar Agarwal, Managing Director, and Mr. Anand Rathi, Group CFO. I now hand the conference over to Mr. Parikshit Kandpal from HDFC Securities. Thank you, and over to you, sir.
Thank you, Aashi. Without taking further time, I'll now hand the floor to Ajendra Ji for his opening remarks on the industry and the financial updates. Thank you, and over to you, sir.
Thank you, Parikshit Ji. Dear all, a very good afternoon. I welcome you all to the earnings call of GR Infra Projects Limited for Q2 financial year 26. I also have with us on call Mr. Anand Rathi, the CFO, and Mr. Ankit Maheshwari, the Deputy CFO of the company. First, let me provide the key highlights on our Q2 performance, followed by recent developments in the infrastructure sector, followed by question and answer session. Revenue from operation in the second quarter of fiscal 2026 stood at 1,234 crores, as against 1,128 crores in the corresponding year in the previous financial year. The EBITDA margin, excluding other income, for the current quarter stood at 9.76%, as against 10.39% in the corresponding period in the previous financial year. During the quarter, the company has repaid the debt of 262 crores, which has resulted in a debt-equity ratio of 0.03, one of the best in the sector. Q2, the company has won one power transmission and distribution project of 3,136 crores and one highway project of 246 crores. As of today, two road projects of 4,300 crores approximately are having L1 status. As on the date, the order book stood at 21,000 crores approximately. As on the date, one DBA40 project of 3,700 crores appointment date is awaiting bids of 4,300 crores approximately, which are to be opened. It constitutes one highway and two hydro and tunnel projects. Moving on to the sector highlights and infrastructure development of India. Road sector. ICRA expects the road award by MoRTH to stand at 9,000-9,500 kilometers in financial year 2026, slightly higher than the estimated 8,500 kilometers for financial year 2025. A recent announcement for the construction of 25 greenfield expressways spanning 10,000 kilometers and costing rupees 6 lakh crores, including BOT projects of 1.25 lakh crores. Total national highway toll collections are projected to surpass 80,000 crores for the first time in financial year 2025-26, up from 72,900 crores in financial year 2024-25. The number of toll users increased by 16.2% in financial year 26, reaching 1,173 million transactions. The toll rate growth is likely to remain at 3%-4% in financial year 26. At the same time, the ministry has also asked the NITI Aayog to review the 30 years old toll collection rules for national highways aimed to create fairer pricing system to make the model more acceptable by all the stakeholders. Power transmission. As per the National Electricity Plan, over 1.91 lakh circuit kilometers of transmission lines and 1,270 gigavolt ampere of transformation capacity is planned to be added till 2031-32. In addition, 33 gigawatt of high voltage direct current bipole links are also be planned. The transmission plan provides visibility of the massive investment opportunity of over 9 lakh crore of transmission sector till the year 2032. Hydro and tunnels. We are looking forward to expand this sector through hydro pump storage projects. It has been taken a big leap now, and from this year onwards, roughly 3 gigawatts of PSP will be added on the average every year as per Central Electricity Authority. By 2032, the target somewhere around 50 gigawatt capacity coming from the hydro pump storage. Dear all, I would like to mention that for decades, the company has been at the forefront of national building construction highways and delivering world-class infrastructure that connects communities and drive progress. The global economy is witnessing the rapid transformation with energy transition and technological innovation and integrated logistics redefining the way industry operate. As part of our continued diversification strategy, the company is evaluating opportunity in the EPC business of oil and gas sector. In the offshore stream, and based on the opportunities available, we are targeting an yearly revenue contribution of 1,000 to 1,500 crores over the next 3 years. Further, we are happy to share that your company has moved to its own corporate office named as GR1. Lastly, I wish to inform you that Vinod Kumar Agarwal, Chairman and Whole-Time Director of GR Infraprojects Limited, has tendered his resignation from the position of Chairman and Whole-Time Director as well as from the office of the directorship of the company. It was due to health reason that has limited to his ability to devote the time and attention to the company. He has been associated with the company since its very inception in 1995. Over the past 3 decades, he has played a pivotal role in the shaping the growth and success of GR Infraprojects Limited, guiding it from the modest beginning to becoming one of India's leading infrastructure companies. His vision and unwavering commitment have been instrumental in building the strong foundation on which the company stands today. We deeply appreciate his immense contribution and dedicated service throughout his long association with the company. Over to you, Anandji, to update on financial position of the company.
Good afternoon. Thank you, sir. For the key highlights of the quarter two performance of the company, our standalone revenue from operation was 1234 crore approximately, quarter ended September 2021, which is increased by 9.36% year-on-year basis. This was primarily on account of the higher execution of the projects. Our consolidated revenue from the operation was 1602 crore in quarter ended September 2021, which is increased by almost 15% year-on-year basis compared to 1394 crore in quarter ended September 2024. Our standalone EBITDA margin stood at 9.76% in quarter ended September 2021 from 10.39% in quarter ended September 2024. This decrease is primarily due to one-time claim income recognized of rupees 21 crore in quarter ended September 2024. Consequently, our EBITDA margin at gross level also has marginally decreased to 24% in quarter ended September 2025 from 25% quarter ended September 2024. Profit after tax at standalone level increased to 131 crore in quarter ended September 2025 as compared to rupees 115 crore in quarter ended September 2024. This increase is the primary result of lowering of interest cost and depreciation during the quarter. Profit after tax at consolidated level decreased to 189.5 crore in quarter ended September 2025 as compared to rupees 193.5 crore in quarter ended September 2024. Net worth stood at almost rupees 8,239 crore at the end of September 2025, which was 7,888 crore at the end of fiscal 2025. Our net worth on consolidated level is rupees approximately 8,942 crore at the end of September 2025, which was 8,503 crore at the end of fiscal 2025. Total standalone borrowing outstanding at the end of fiscal 2025, at September 2025, is rupees 240 crore with debt to equity of 0.03 times. Consolidated borrowing outstanding at the end of September 2025 is rupees 5,995 crore with debt to equity ratio of 0.67 times at consolidated level. During the quarter, company has made addition to the fixed asset amounting to rupees 18.5 crore and net block of property, plant and equipment is rupees 1146 crore at the end of September 2025. Investment in subsidiary company in form of loans and equity is rupees 2698 crore at the end of September 2025. Balance promoter contribution required to be made for our operational or under construction HAM, BOT or power transmission project is rupees 3,205 crore, which we are expecting contribution of rupees almost 500 crore in the second half of the fiscal 2026. Our working capital in days at the end of September 25 is 98 days as compared to 170 days at the end of fiscal 2025. This decrease is primarily on account of decrease in SPV debtors and unbilled revenue. Our trade receivable at the end, at the standalone basis are rupees 686 crores, which includes 1525 crore of HAM debtors at the end of September 2025. Our trade receivable at the consolidated level are rupees 195 crore at the end of September 2025. Our unbilled revenue at the standalone basis is around 560 crore at the end of September 2025. And at the same, at the console level was, is rupees 407 crore at the end of September 2025. Our inventories are around 583 crore at the end of September 2025 as compared to 538 crore at the end of fiscal 2025. That's all about the financial highlights for the quarter ended September 2025. I take this opportunity to thank you all our stakeholders, including employees, business partners, vendors, bankers and auditors who have supported the company in its transformation journey. On behalf of GN Projects Limited, I also thank everybody for attending the earning call. Thank you. May I request the moderator to open the floor for question and answer, please?
Thank you, sir. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Mr. Shravan Shah from Dolat Capital. Please go ahead, sir.
Thank you, sir. Sir, first a couple of questions on the guidance and then maybe I have a detail on that. So now in the 1H on the revenue front, we have done just a 1.2% and we were looking at 10 to 15% growth this year. So that means 18 to 28% kind of a ask rate is needed in the second half. So just wanted how now we are looking at the revenue for FY26 and also in terms of the order inflow. So excluding the GST till now, how much we have received and how much more are we targeting this year?
रेवेन्यू जो सेकेंड हाफ है उसमें अपने 5 से 10% का ग्रोथ करेंगे. कुछ समय से कुछ प्रोजेक्ट अपने स्टार्ट नहीं हो पाए हैं, तो उसकी वजह से जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी उतनी नहीं आ पाई है। लेकिन जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं उसके ऊपर अपन ने जो एक्सपेक्टेड जो एग्जीक्यूशन है वो किया है। लेकिन गवर्नमेंट साइड से कुछ प्रोजेक्ट के जो अपॉइंटेड डेट डिले हुई है उसकी वजह से थोड़ा सा डिले है। और नए प्रोजेक्ट के जहां तक सवाल है, अभी तक गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है वो काफी रोबस्ट है, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे वर्किंग उतनी नहीं हो पाई है। लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर नहीं तो फोर्थ क्वार्टर में ये ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए।
बट सर उसमें इनफ्लो के एंगल से कितना हमको लग रहा है कि हम कितना बीट करेंगे एंड कितना अपने को मिल सकता है, एंड वहां पे भी मतलब एनएचआई एंड रोड साइड से एंड बाकी ट्रांसमिशन एंड दूसरे सब सेक्टर से हाइड्रो में इस सब से कितना हम लोग देख रहे हैं?
सोन भाई, दैट गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ इनफ्लो फॉर द करंट ईयर रिमेन्स द सेम व्हाट वी हैव गिवन इन पास्ट। अभी इश्यू इज ओनली थिंग इज दैट प्रोजेक्ट अवॉर्डिंग और बिडिंग जो है वो डिले हो रहा है। तो व्हाट वी आर टारगेटिंग फॉर द करंट ईयर, व्हाट वी हैव टारगेट, मतलब 20 to 25,000 करोड़ का नया प्रोजेक्ट वी विल ट्राई टू विन, राइट? एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बिकॉज जो जो रोड के भी काम है, राइट, रोड के काम विच एनी वे वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इन क्वार्टर फोर दैट वुड बी यू नो स्टार्टेड अवॉर्डिंग एंड बिडिंग वो सारा होगा। So we'll be getting, you know, those projects in that period of time during quarter four only. So for the current year, in terms of total incoming order book, we are targeting between 20 to 25,000 crore. So far, अभी तक हमारे को करीब 3,000 crore का काम we have taken so far.
So NHAI की और जो ministry के जो guidelines हैं, उसमें जिस तरह से उन्होंने project की qualification और project की size बढ़ाई हैं, तो हमको होपफुली है कि हम अपने टारगेट अचीव कर लेंगे। बट क्वेश्चन मार्क अभी ये बिडिंग स्टार्ट होने का है, गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस प्रोजेक्ट अवार्ड करने में लैंड एक्विजिशन के लेवल की वजह भी मॉनिटरिंग ज्यादा हो रही है, तो उसके बेस पे थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन प्रोजेक्ट के वंस ये बिडिंग स्टार्ट होता है तो ये टारगेट अचीवेबल है।
बट वही सर, सबसे बड़ा वही चीज है। सो वन इज द रोड, सो वहां पे भी कितना अभी तक आपको लग रहा है कि टेंडरिंग टोटल होएगा, और उसमें से अगर हम लोग 20,000 मतलब 15-18,000 करोड़ भी अगर रोड से देख रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ द विनिंग स्ट्राइक रेस आल्सो मैटर्स। अगर वहां से भी अगर 1,00,000 करोड़ टाइप का ही अगर होएगा तो फिर अपने को स्ट्राइक रेस ज्यादा चाहिए, तो वही समझ आता है। बाकी ट्रांसमिशन हाइड्रो और वहां से कितना अपने देख सकते हैं? सर ये तो अभी का एंड नेक्स्ट ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे अपने को अगर ग्रोथ करना है तो फिर सिमिलर काइंड ऑफ रन रेट वी ऑल्सो नीड, 25-30,000 करोड़ टाइप का अपने को ऑर्डर इनफ्लो चाहिए अगर अपने को वैसा टाइप का जो ओरिजिनली हम लोग सोच रहे थे वैसा अपने को ग्रोथ लाना है। तो
ये अभी जो जिस तरह से अपनी जो प्लानिंग है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए हाईवे ही है। अगर हाईवे की बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम लोग इसमें जिस तरह से गवर्नमेंट ने अभी हेम के अंदर और जो बीओटी प्रोजेक्ट के अंदर जो क्वालिफिकेशन चेंज किए हैं, तो फाइनेंशियली और टेक्निकल क्राइटेरिया जिस तरह से चेंज किए हैं वो अपने को फेवरेबल नजर आते हैं, और अगर बिडिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम लोग अचीव कर लेंगे। मतलब इसमें
सो श्रवण, उसमें क्या है कि हाईवे में वी आर नॉट टारगेटिंग मोर देन 10,000 करोड़, इन रेलवे मेट्रो देर ऑल्सो वी आर टारगेटिंग 2-3,000 करोड़ ऑफ यू नो वर्क, हाइड्रो टनल पावर ट्रांसमिशन वी हैव टेकन गुड अमाउंट ऑफ वर्क, बट और 2,000 करोड़ का काम ले सकते हैं। तो व्हाट वी आर टारगेटिंग ओवरऑल इफ वी ऐड ऑल दोज सेगमेंट ना, तो यस ऑफ कोर्स हाईवे इज द बिगेस्ट सेगमेंट फॉर अस। अगर एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 1.5 लाख करोड़ का तो बिड होगा इन द करंट फाइनेंशियल ईयर सेल्फ, एंड वी आर टारगेटिंग 10-11,000 करोड़ द यू नो हाईवे प्रोजेक्ट, तो विच आई मीन गिवन दैट द ट्वीक विच हैज हैपेंड इन यू नो पॉलिसीज एंड जो सर्कुलर एन एच आई के लेके इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन एज वेल एज नेटवर्क इश्यू, वी बिलीव दैट वी विल बी एबल टू गेट दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट।
ओके, एंड सर अगर अपने को ऐसा 20-25,000 करोड़ जो सोच रहे हैं वैसा अगर आ गया तो फिर अगले साल में हम लोग कैसे, मतलब मोस्टली अगर ये आते हैं तो भी हैम एंड मे बी कुछ टोल वाले प्रोजेक्ट भी हम लोग लेंगे, तो अगले साल में कैसे ग्रोथ देख सकते हैं कि वहां से कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम होएगा, तो FY27 में रेवेन्यू के एंगल से देखें, बिकॉज अभी अगर हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड हाफ में सबने जैसे बोला कि 5-10% मतलब 3,800 करोड़ टाइप का हम लोग रेवेन्यू देख रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर देन टू कंपेंसेट जो अगले तीन साल से अपना ग्रोथ नहीं है, सो कैन वी सी अ 25-30% का ग्रोथ इज ऑल्सो पॉसिबल इन FY27?
25% का तो FY27 सीम्स थोड़ा सा, वो थोड़ा सा इट सीम्स फॉर अभी विजिबल उतना नहीं होता है 25% FY27, बट यस ऑफ कोर्स एटलीस्ट 10%, बिकॉज इस साल में भी व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि करंट ईयर में विल नॉट डी ग्रो, पर लास्ट 2 साल से अपन डी ग्रो कर रहे थे, करंट ईयर में विल बी यू नो प्लस प्लस ओनली, मतलब व्हाट वी अचीव इन पास्ट. तो आई थिंक फॉर 27, यस ऑफ कोर्स, आई मीन करंट ईयर में अगर 20,000 करोड़ विल बी एबल टू गेट, तो 27 नहीं तो 28 सर्टेनली विल बी हैविंग डबल डिजिट ग्रोथ.
नहीं, डबल डिजिट तो सर 10% इज ऑल्सो डबल डिजिट, सो वी नीड सिग्निफिकेंट, मतलब 25-30%
टेन तो करंट ईयर में भी वी आर टारगेटिंग, मतलब एक प्रोजेक्ट अपना डिले हो गया मे बी बाई 2-3 months, और दिस इज वर्किंग सीजन राइट, सो उस वजह से अदरवाइज आर अर्लियर एस्टिमेट वॉज 10% एटलीस्ट फॉर द करंट ईयर ऑल्सो, तो मे बी वी नॉट बी गोइंग लेट से 10%, तो 5-7% तो अभी भी करेंगे, बट गोइंग फॉरवर्ड मे बी इन 27 डिपेंडिंग ऑन वॉट काइंड ऑफ ऑर्डर वी आर गेटिंग इन द करंट ईयर विल बी हैविंग एटलीस्ट 15% काइंड ऑफ ग्रोथ.
ओके, एंड सर मार्जिन में, सर अभी मार्जिन यही 11-12% का के रेवेन्यू बढ़ेगा तो वी कैन लुक एट 13% तक का भी मार्जिन होएगा.
सी मार्जिन अभी क्या है कि इट इज टू अर्ली टू से, बिकॉज ऑर्डर किस तरीके से आता है. सी राइट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर अ डिसेंट ग्रोथ ऑल्सो वी नीड 20,000 करोड़ ऑफ ऑर्डर राइट. अगर मेरे को 30,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है वेयर वी कैन यू नो शो द ग्रोथ ऑफ 20%, तो माई मार्जिन वुड डेफिनेटली इंक्रीज, बट अदरवाइज आई बिलीव दैट कि वो आधा परसेंट कम ज्यादा में, आधा 1% कम ज्यादा, तो मे बी 13 और मे बी 11, that would be the range.
Got it. And lastly, sir,
I'm sorry to interrupt, sir.
No issues. Thank you.
Thank you so much, sir. The next question is from the line of Mr. Abhinav from ICICI Securities. Please go ahead.
Yeah, hi, sir. Thanks for the opportunity. My question is on the status of orders where we are L1. We were expecting LOA and also the other project, Agra project, where appointed date is pending. So what are the challenges that we are facing? When can we expect it to be converted into LOA and you know execution to start?
अपने ये जो आगरा ग्वालियर का प्रोजेक्ट है इसकी तो अपॉइंटेड अगले 1-2 महीने के अंदर, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में आ जानी चाहिए. और जहां तक सवाल है इन दो प्रोजेक्ट्स का, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो स्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, इसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है कि भी ये प्रोजेक्ट रीबिडिंग में होंगे या इस पे अवार्ड देंगे, अभी तक क्लियरिटी आई नहीं है सरकार की तरफ से. ये मतलब वापस प्रोजेक्ट की साइज वगैरह कुछ चेंज करने के या प्रोजेक्ट में स्कोप में कुछ डिस्कशन चल रहा है इनका, तो जो टेक्निकल इश्यू है कुछ, तो वो टेक्निकल इश्यू रिजोल्व होता है सेम रहता तब तो प्रोजेक्ट अवार्ड करेंगे, अगर कुछ टेक्निकली कुछ चेंज करना पड़ा तो फिर प्रोजेक्ट रिबिटिंग में जा सकता
है. अंडरस्टूड. एंड सर, व्हेन यू से अबाउट 20,000 करोड़ ऑफ ऑर्डर इनफ्लोज, दैट इज कंसीडरिंग दिस L1s और अपार्ट फ्रॉम दैट?
नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज ओवर एंड अबव.
एंड सर, हाउ इज द पाइपलाइन लुकिंग लाइक, कैन यू क्वांटिफाई सेगमेंट वाइज व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी?
हाईवे में जो पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट है वो 2,82,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है, और रेलवे में करीब 26,000 के हैं, और मेट्रो में करीब 22,000 के हैं, इसी तरह से हाइड्रो में करीब 28,000 है, और टनल में करीब 19,000 के हैं, पावर ट्रांसमिशन में 27,000 है, और रोपवे में, और उसमें तो इतना कुछ ज्यादा नहीं है. ठीक है, इस तरह से है.
अंडरस्टूड. एज अ फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विटी इन्फ्यूजन दैट इज पेंडिंग फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर H2?
We are targeting around 400 to 500 crore for the H2.
Understood. Thank you, sir.
Thank you.
Thank you.
The next question is from the line of Mr. Mohit from ICICI Securities. Please go ahead.
Hi. Good afternoon, sir. Sir, a question the oil and gas. Sir, आपने कहा कि oil and gas में आप लोग कुछ 13,000 करोड़ की amount की बात कर रहे थे. 13,000 करोड़ per annum की बात कर रहे हैं और इसके लिए सर किस तरह के oil and gas के किस तरह के business कर सकते हैं सर हम लोग near term में?
अभी अपन EPC business की बात कर रहे हैं और ये 3 साल के business के बारे में बात कर रहे हैं. 3 साल में अब इस level तक अपन आ जाएंगे मतलब.
13,000
तीसरे साल में मतलब हाँ पर एनम का तीसरे साल.
अच्छा इसमें सवाल है क्या हम लोग क्या कर सकते हैं सर पाइपलाइन कैन यू जस्ट क्वांटिफाई द यू नो काइंड ऑफ वर्क व्हिच वी कैन डू.
हाँ पाइपलाइन एंड जो ईपीसी बिजनेस है उसके अंदर अपन काम प्लेटफॉर्म का पाइलिंग का.
अंडरस्टूड सर. और सर देखो सर ये लास्ट ईयर सर आपने जीता एक तो आप हमारे पास आगरा का प्रोजेक्ट है और एक सर आपका एक हमारे पास ट्रांसमिशन का लार्ज प्रोजेक्ट है. दोनों मिलाकर 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये दोनों मिलाकर ही सर नहीं नेक्स्ट ईयर तो ग्रोथ के लिए सर नेक्स्ट ईयर FY 2027 के लिए दोनों प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन सर अच्छा खासा रहेगा सर राइट. मुझे लगता है कि 2,000 करोड़ सर इनसे आ जाएगा राइट नेक्स्ट ईयर के लिए FY 2027 में ये दोनों प्रोजेक्ट से
दोनों का मिला के करीब 3,000 करोड़ का आएगा
नेक्स्ट ईयर.
प्लानिंग तो देखनी पड़ेगी पर मतलब ये क्या है प्रोजेक्ट आर एक्चुअली रनिंग टू 3 इयर्स मतलब ट्रांसमिशन इज 2.5 ईयर और वो रोड इज बेसिकली 2.5 ईयर अगेन मतलब अभी स्टार्ट हुआ नहीं है तो इट विल टेक अनदर 3 इयर्स. तो आप ये समझो कि 2,000-2,500 करोड़ का फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू वी कैन टारगेट.
लास्ट क्वेश्चन सर ये अभी लास्ट ईयर से एनएचआई ने कहा था कि ये अप्रैल मई में कहा था कि 3,60,000 करोड़ का हाईवे बिड आ सकता है सर. तो सर आप देख रहे हैं सर बिल्डअप कुछ हो रहा है टेंडर्स का या बस स्लो ही हो रहा है अभी?
देखिए अभी इसके ऊपर वर्किंग तो हो रही है काफी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है प्रोजेक्ट की साइज भी इन्होंने बढ़ाई है क्वालिफिकेशन भी चेंज किए हैं काफी काम तो हो रहा है लेकिन बिडिंग का जहां तक सवाल है वो फोर्थ क्वार्टर में ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली.
अंडरस्टूड सर. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सर. थैंक यू.
Thank you. The next question is from the line of Mr. Ayush from Cavi Capital. Please go ahead.
Yes. Hi, sir. So my question was regarding two projects. One is the Bamni one and the another one is Anjar Bhuj. So I think they passed due their completion date. So is there any update on those?
Bamni and Anjar Bhuj. Let me come back. Mm-hmm. Mm-hmm. Your question is with respect to the state of those projects, right?
Yeah, the completion date. I think they passed their completion date. The stipulated completion date. They're still under construction.
Bamni ka, I think June 26th.
June 26. Bamni project is COD. Scheduled COD is June 26. Right?
Okay.
And Anjar Bhuj April 26.
Anjar Bhuj is April 2026. That is maybe okay. With along right? So this is the status. Yeah.
Okay. And sir, my next question is regarding to the maintenance capex that we're expecting in the H2 and also maybe the next. If you can give us some insight.
Maintenance capex.
Yeah, the capex we're expecting to do.
See, maintenance, I don't think we'll be, I mean, maintenance is always is the usual activities for us basically. And we are not basically, you know, maintaining this kind of maintenance capex. Because, yes, there are 2-3 projects which would be coming under major maintenance maybe next year, in first half or second half of the current year or maybe first half of the next year. That's the status of that road particularly. Maybe it may be delayed by another 1 year. So it may not be, yeah.
Okay. Okay, sir. So the last question is regarding that, are we going to transfer any project to the Indus Infra Fund during this financial year?
Yes, I mean, this one particular project is already, I mean, where we have taken the board approval to transfer to that InvIT. And depending on, I mean, additionally, we can transfer one or two more projects in second half of the year.
Okay. Thank you so much, sir. That is all.
Thank you. Participants, if you wish to ask a question, you may press star and one on your touch-tone telephone. The next question is from the line of Mr. Vaibhav Shah from JM Financial Limited. Please go ahead.
Yeah. Thank you, sir. Sir, in terms of equity requirements, so what would be the number for FY 2026, 2027, and 2028?
See, total outstanding equity which has to be infused so far is now 3,200 crore over the period of next 3 years, right? So maybe on a yearly basis, it would be around 1,000 crore.
How much you have infused in first half of this year?
First half. Equity contribution in the first half. I have to check. I'll come back.
Sure. Sir, what is our CapEx guidance for the entire year?
The entire year CapEx won't be in the range of 100 crore.
So far, we have put in almost 50 crore.
Okay. Sir, I missed the number for HAM debtors.
It's around 1,500 odd crore, right?
1,500 crores.
Okay.
HAM debtors.
So you mentioned that for this year, the revenue growth would be somewhere around 5-6%. And next year, we can see a 15% growth. Am I right?
Yes, sir.
Yeah. Next year, 15%, depending on if we'll be able to get in current year, 20,000 crore of incoming orders, right?
But even if we consider the current backlog, if those orders also receive the appointed, then also 15% should not be a challenge.
Yes.
Yes, yes. I mean, depending, I mean.
See, one is major, which we are expecting that the Agra-Gwalior project, right?
Yes.
Which we are expecting that appointed date would be at least anywhere in the, I mean, maybe first month of the next quarter. And accordingly, so, I mean, it depends. But generally, what we are expecting that next year certainly will be growing. Yeah.
Okay. Sir, secondly, for the two MSRDC orders, Nagpur-Chandrapur Package 1 and Pune Ring Road Package E6, so sir mentioned that there might be a cancellation. So have you factored any revenues from the project in 2027 in our estimates?
No, no, no. So whatever confirmed orders are there, right? Right.
So it can be canceled, both the orders?
नहीं, अभी confirm नहीं है. मतलब ये technical evaluation चल रहा है. इसमें technical कुछ अगर change करने पड़ता है, तो करेंगे, otherwise नहीं करेंगे.
अभी तक आया नहीं है ना. It will take some time. काफी time हो गया है तो.
Okay. But sir, Pune Ring Road Package 5 है, W5, उसका तो काम शुरू हो गया है. तो भले Nagpur-Chandrapur का chances है, but even Pune Ring Road E6 में भी cancellation हो सकता है due to this challenge on technical grounds?
हाँ, technical ground ही है, sir, दोनों ही projects के अंदर.
Okay. So हम factor नहीं कर रहे अभी revenue in 2027-2028 from the project in our estimates?
No, no. अभी नहीं कर रहे.
Okay. Okay.
अच्छा, for current year equity infusion, yeah, for current year equity infusion was 600 crore approximately.
In the first half?
So far. Yes, first half.
Okay. Okay. Thank you, sir. Those are my questions.
Thank you.
Thank you.
Participants, if you wish to ask a question, you may press star and one on your touch-tone telephone. The next question is from the line of Mr. Parvez from Nuvama Group. Please go ahead, sir.
Hi. Good afternoon, and thanks for taking my question. So a couple of questions from my side. The transmission project that we won this quarter, what would be the EPC cost of that particular project?
EPC cost we have considered for this in our order book is around 1700 or 1800 odd crore. Though the project size was around 3100, total so for SPV it is around 3150 crore, and rest is basically material directly procured by SPV.
Sure. You said the HAM debtors were about 1520 crore, right?
1525 crore, yeah.
25 crore. And lastly, of our 21,000 crore order book, what is the quantum of projects where we are yet to get the appointed date?
It's only one. Because the transmission is effectively is getting...
I mean, the project is taken as start as and when the company is handed over to us. So the last two projects which we have got is transmission one and Agra one. So Agra is yet to be declared appointed date, but yes, technically it is only Agra project for which appointed date is pending.
And for the BSNL project, the work is already underway, right?
BSNL,
that is already started.
Yeah, that is already started. Yeah, that is already started.
Okay. Sure, sir. Thanks and all the best.
Thank you.
Thank you. The next question is from the line of Mr. Sudeep from Ambit Capital. Please go ahead.
Hello, sir. Thank you for taking my question. The question is, how much amount of dividend and interest have we received from the InvIT in this particular quarter?
So far, I think we have received total income from InvIT is around 340 crore
might be.
Sorry, sir, 340 is it?
Just hold on. I'm just checking. 20 crore.
320 crore.
For the current first half?
For the first half. 93 crores in first half. And 320 overall.
Yeah.
Oh. 320 crore total.
93 crore is basically
in first half of this year.
What is the total income so far we have received from the InvIT in the current first half?
What last?
That bifurcation is still pending, I mean, in terms of dividend and interest is separately, but total amount which we have received is 93 crore.
93 in first quarter, right?
First half.
Okay. And regarding one of the railway project that you won in Gujarat, so that has already started, right?
Yeah.
Yes. Okay.
That's
it from my end. Thank you.
Thank you.
Thank you. Participants, if you wish to ask a question, you may press star and one on your touchtone telephone. The next question is from the line of Mr. Shravan from Dolat Capital. Please go ahead.
Hi, sir. Sir, ye dividend and interest of 93 crore jo 1H mein mila hai. So for full year, हम लोग पहले 230-240 करोड़ देख रहे थे, but it seems के Q1 में 40 करोड़ था, now in Q2 it is a 53 करोड़, तो ये run rate अभी increase होएगा, and full year में कैसे देख सकते हैं, next year कैसे हम इसको देख सकते हैं?
See, generally what guidance we have got from the InvIT team is that overall distribution would be in the range of 11-12%, right? Because our investment is around 2000 crore, so we can reasonably expect that 225 crore or 230 crore would be the total income from InvIT.
Okay, that is kind of a recurring, even 27, 28 also, the similar number should be there.
Subject to we continue our investment, right, also.
हाँ, but अगर हम लोग और transfer कर रहे हैं तो this number will keep on increasing ना?
Right.
Okay. एंड सर सर ने स्टार्टिंग में कुछ बोला था लेकिन थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम था. अभी तक हमने कितना वैल्यू का प्रोजेक्ट्स एंड कौन से प्रोजेक्ट बीड कर चुके हैं जहाँ पे बीड अभी ओपन नहीं हुए?
ऑलमोस्ट 4,300 करोड़ का बीड अभी ओपन होना बाकी है. उसमें से वन इज बेसिकली हाईवे, टू आर हाइड्रो एंड टनल.
टू हाइड्रो एंड टनल वैल्यू रफली बता सकते हैं कि कैसा हाईवे जो रहेगा वो
3,000 का टनल समझ लो, 1,000 के आसपास का.
ओके एंड हाईवे ये मोस्टली इट वुड बी अ हैम.
हैम यप.
ओके एंड आगे भी अभी जो ये जो है वो भी मोस्टली अपना प्रेफरेंस हैम ज्यादा रहेगा कि टोल ऑल्सो काइंड ऑफ आप कंफर्टेबल जो 10,000 करोड़ हम सोच रहे हैं तो उसमें मतलब 3,000-4,000 करोड़ टोल भी ले सकते हैं और कैन बी इवन हायर ऑल्सो?
नहीं बिकॉज सी देखो वो तो गवर्नमेंट मतलब एनएचआई खुद ही कंफर्टेबल नहीं इन टर्म्स ऑफ मोर टोल. उनका भी तो उनका रेशियो इन टर्म्स ऑफ टोल वुड बी 20%. अदरवाइज ऑल्सो लेट्स से इफ यू आर टारगेटिंग 10,000 करोड़ ऑफ ऑर्डर फ्रॉम हाईवे तो 2,500 करोड़ का 3,000 करोड़ का टोल ले लो, उसके बाद में देन इट मोर वुड बी हैम ओनली.
ओके ओके समझ गया. एंड सर लेट्स से के इफ वी गेट दिस 22,000-25,000 करोड़ इनफ्लो दैट वी आर लुकिंग एट सो नेक्स्ट ईयर डू वी थिंक दैट के दैट काइंड ऑफ मतलब 10-15,000 करोड़ प्लस का रन रेट इन द हाईवे इज ऑल्सो पॉसिबल? इफ नॉट देन वी ऑल्सो हैव टू सिग्निफिकेंटली कीप ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर इनफ्लो फ्रॉम द अदर सेक्टर्स. तो ब्रॉडली नेक्स्ट ईयर के लिए हाउ वन कैन लुक एट इवन इफ लेट्स से वी गेट द 25,000 करोड़ दिस ईयर सो नेक्स्ट ईयर देन विल इट बी ऑन द लोअर साइड फ्रॉम अवर साइड इटसेल्फ और या कैसे देख सकते हैं उसको?
In what you are asking is basically how will you know go about highway, right? Going forward.
मतलब हाईवे एंड ओवरऑल भी मतलब अगर 25,000 करोड़ का इनफ्लो अगर ये साल में आ गया तो अगले साल टोटल नंबर क्या होगा उसमें हाईवे हम कैसे देख सकते हैं? मतलब हम क्या सोच रहे हैं उतना आपको लग रहा है कि उतना अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलरली एनएचए साइड या स्टेट लेवल के हम लोग देखेंगे कौन से स्टेट में आपको लग रहा है कि अगले साल में आ सकते हैं?
ये तो बहुत मतलब दूर का क्वेश्चन पूछ लिया आपने. बट सी देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इफ यू आर टारगेटिंग 10,000-15,000 करोड़ ऑफ हाईवे उतना तो अपन कर ही लेंगे. तो एटलीस्ट व्हाट आई बिलीव इज दैट कि लेट्स से इवन इफ करंट ईयर वी आर गेटिंग 25,000 करोड़ और 20,000 करोड़ देन ऑल्सो नेक्स्ट ईयर विल बी टारगेटिंग एटलीस्ट नॉर्थ ऑफ 25,000 30,000 के टारगेट करेंगे एंड उसमें 15,000 करोड़ ऑफ द हाईवे वुड बी ओके फॉर अस. एंड उसमें अब एनएचआई कितना लेके आएगा मोर तो फॉर नेक्स्ट ऑल्सो आई मीन डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ बजट एलोकेशन इज बीइंग मेड बाय गवर्नमेंट का. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ टू टेल अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर विल बी गेटिंग इन नेक्स्ट ईयर. थोड़ा सा एक बार बजट आ जाए इस बार का देन ओनली विल बी एबल टू टेल. बट समझ में आता है कि दिस काइंड ऑफ पेस वी कैन मेंटेन इवन नेक्स्ट ईयर. मतलब जैसे पावर ट्रांसमिशन में भी वी कैन टारगेट दिस काइंड ऑफ पेस राइट. सिमिलरली मेट्रो में भी वी कैन काइंड मतलब कि बिकॉज इतना अभी लग रहा है अपने को कि जितना जिस तरीके से प्रोजेक्ट अवार्ड या प्रोजेक्ट इज गेटिंग अप्रूव थ्रू यू नो सीसीए और जो गतिशक्ति में जो प्रोजेक्ट डाल रहे हैं तो व्हाट वी बिलीव इज दैट दिस पेस प्रॉब्ली विल बी एबल टू कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर एज वेल.
ओके एंड अगर इसके अलावा अगर अपने को कोई सेक्टर अभी देखना है तो एटलीस्ट 1-1.5 साल के लिए वी विल नॉट बी लुकिंग एट एनी अदर सेक्टर अपार्ट फ्रॉम जो हमने अभी किया है ट्रांसमिशन रोड टनलिंग मेट्रो. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ मतलब सोलर पावर पंप्स आपने बताया कि वो देख रहे हैं बट सोलर या BESS के एनी अदर सेक्टर वो देख रहे हैं क्या? हम
प्रोजेक्ट सेक्टर देखते रहते हैं. ओनली थिंग इज दैट इफ दैट उसमें क्या है मतलब वी हैव टू बेसिकली देन एनालाइज द मैट्रिक्स ऑल्सो सेक्टर में मतलब दैट काइंड ऑफ ग्रोथ इज और दैट साइज ऑफ वॉल्यूम इज अवेलेबल और नॉट एक तो वो देखना है और इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मार्जिन व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज प्रॉब्ली विल बी गेटिंग राइट. ये सारा देखिए तो वी आर ओपन टू वेरियस सेक्टर. ऐसा नहीं कि अपन सेक्टर नहीं देख रहे हैं.
सेक्टर देख रहे हैं दैट्स व्हाई वी आर एक्चुअली टारगेटिंग कि अभी ऑयल एंड गैस में ईपीसी कुछ करना चाहिए बिकॉज देयर वी बिलीव दैट देयर इज अ साइजेबल वॉल्यूम वेयर वी कैन बेसिकली टैप दोज अपॉर्चुनिटीज. अब सोलर में भी क्या है कि अभी मतलब वी आर नॉट एबल टू रिकॉन्साइल विद इन आर सेल्फ. हम लोग देख रहे हैं विल बी एबल टू, ऐसा नहीं हमने सोलर में भी बिट किया है बट दैट काइंड ऑफ मार्जिन वहां पे मिल नहीं रहा है. सो वी आर नॉट वेरी बुलिश सो फार कि सोलर में हम कुछ कर पाएंगे. अगर सिनेरियो चेंज होता है सडनली विल बी सी क्या होएगा. देयर आर सो मेनी आई मीन बिकॉज व्हाट एनएचआई हैज डन इन पास्ट दे हैव चेंज द सर्कुलर इन टर्म्स ऑफ द नेटवर्क क्राइटेरिया and that is also applicable for other aspect, other infrastructure sector. So just say for example if some is road player who is you know also bidding into transmission solar and there also ultimately their network would be consumed. So maybe that would be you know opening up more revenue into highway sector either or in other sectors where right where we can deploy capital and at the same time we get good margins, right? So abhi ultimately how it will be unfolded, it is a matter of time. Matlab we have to basically samajhna padega isko going forward. Once that you know awarding activity starts then only will we be able to and usme jyada will be able to give more clear guidance maybe after or maybe in Q4 only.
And sir ye jo qualification criteria change hua hai do we think ke uska aur have you work out ke jo last 2 years mein particularly for 24-25 where many unlisted and unorganized players have won the projects from NHAI. So कितने उसमें से निकल जाएंगे roughly ballpark 20-30-40-50% would be will not be able to find up a bid now ऐसा कुछ trying to understand के competition कैसा रहेगा and margin में fight होएगा के similar margin हो सकता है कि नहीं वो sense just wanted to understand.
इसमें क्या होगा सर project wise देखना पड़ेगा कि इसमें मतलब आप यो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन ऐसा नहीं कह सकते 50% बिडर रहेंगे 50% नहीं रहेंगे बट नेटवर्क है क्राइटेरिया है टेक्निकल क्राइटेरिया है तो डिफरेंट मतलब अपन ये कह सकते हैं तो ये बिडिंग स्टार्ट होने के बाद में जल्दी इसमें 50% मतलब लोग रह पाएंगे पर कौन कहाँ रह पाएगा कौन किस में पार्टिसिपेट कर पाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है.
थैंक यू सर ऑल द बेस्ट.
Thank you. The next question is from the line of Mr. Vaibhav from JM Financial Limited. Please go ahead.
Yeah. Sir, thoda detail chahiye tha on the ONG business. So, oil and gas mein what actually are we, what works are we targeting? And kuch humne hiring kiya hai, team build-up kiya hai internally?
Team build-up kar rahe hai hum log. Apne internally hiring bhi kiya hai. And there also, that's why we are getting some sort of confidence कि हम लोग को कुछ काम मिल जाएगा. And what is the question? What I think?
What segments are we targeting within oil and gas?
What revenue?
What क्या क्या काम करना है उसमें? Which all works are we targeting?
इसमें जो platforms के और pipelines के जो काम है उसको target कर रहे हैं. ऑफशोर में इन ऑफशोर वी आर टारगेटिंग इन ऑफशोर एक्टिविटीज जो पाइपलाइन लेइंग हो गया या फिर प्लेटफॉर्म मॉडिफिकेशन प्लेटफॉर्म इरेक्शन इंस्टॉलेशन राइट तो ये सारा एक्टिविटी अपन विल टारगेट.
सर तो ये डोमेस्टिक देख रहे हैं कि इंटरनेशनल के लिए भी आर ओपन?
नहीं नहीं डोमेस्टिक डोमेस्टिक
नहीं नहीं डोमेस्टिक मतलब विल स्टार्ट एटलीस्ट विद डोमेस्टिक थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए फिर जाएंगे कहीं जाएंगे.
सर उसमें बॉल पर क्या मार्जिन टारगेट कर रहे हैं हम लोग और कुछ ऑर्डर्स पाइपलाइन में है कुछ बिड किया है हमने?
नहीं नहीं अभी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज चालू है तो और मार्जिन तो मे बी 1 or 2 प्रोजेक्ट्स प्रॉब्ली वी कैन स्टार्ट विद लोअर मे बी 8-10% एंड देन प्रॉब्ली विल टारगेट 15% काइंड ऑफ मार्जिन.
ओके एंड सर एक बार गाइडेंस अपना FY26 का रिइटरेट कर रहा हूं मैं. So revenue would be 10-15% growth for 27 and for 26 it will be around 5% growth, right?
Yeah.
And sir, margins kaise rahenge isme for 26 overall?
Margin I already apne wo bola tha overall. In fact, in previous question also I speak about that margin ki wo aadha 1% is there between 11-13% anywhere between aisa kuch rahega.
इन द सेकेंड
हाफ ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं. on year.
Okay. ठीक है सर. Okay. Thank you.
Thank you.
Thank you. The next question is from the line of Mr. Parikshit from HDFC Securities Limited. Please go ahead, sir.
Hi, sir. I have a couple of questions. So first is on the transmission segment. Now we have 2,700 crores of order book. So just wanted to understand, first of all, that how much equity has been invested, total pending equity in these assets. And on the capability-wise, are we now confident that we can start taking some of the EPC projects independently, like some of the peers of our do, to build diversification?
The total equity, I'll tell you. But EPC, mein, see, generally, why we are not that basically, you know, aggressive in terms of taking other other players' EPC, right? Because we are getting enough food for us within our company, right? I mean, let's say if you are targeting 5,000 crore of revenue and we'll be able to get, let's say, these kind of projects, probably we'll be able to, you know, do in-house only, and may not be, you know, we may not be going looking outward also. But if we are not getting, but because we are building EPC capabilities over there, and so far we have, you know, built enough, you know, good amount of team also here in terms of EPC. So we are not saying that we will not be doing outside EPC. But yes, I mean, so far we haven't, you know, looked through those kind of options. Reason being that we have enough food within, you know, within, I mean, in-house at least. Okay. And so far we have invested around 275 crore of equity into existing transmission projects.
And how is the pending equity, sir?
Pending equity would be for transmission.
Transmission.
Kitna ho gaya? Transmission would be what, around.
Boot transmission. Mm-hmm. Oh, yeah.
115 crores.
2,000
crore
would be pending. Sorry, sir, how much equity spending
in a transmission? 2,000.
Total order book
is total order book is around 6,000 crore. See, order book is different, but abhi current year mein, so total, I mean, aapne bola total equity investment kitna hai?
1,084 crore is pending.
कितना है?
1,084 crore is pending for power transmission.
1,084 crore?
Is pending, हाँ. 247 already
invested. नहीं, इससे ज़्यादा होएगा ना. 6,000 crore का total order होगा आपने पास में. नहीं, कितना होएगा?
नहीं.
6,000 या
5,000 crore. As per the order book, आपका 13% है transmission में.
2,700 crore में क्या है? Equity we have to put in for material also which we are purchasing over there. So, अभी जैसे 3,000 में से 1,300 crore तो material which we are procuring. For that also we need to put in basically equity. और जो अभी अपन ने जो डाल दिया है, so total equity which so far we have infused, इसकी total कितना है?
275 so far invested.
So 275 we have infused already. Correct. And 1,100 crore of equity we have to put in additionally. Right. Not in, so sorry, my bad. It was 1,100 crore. Yeah.
So total order book as per the presentation is 13% or 2,700.
So the order book is kitni hai transmission mein? 2,800. That is the order
pending, right? Okay. 2,800 crores is EPC value of the order pending as of now.
EPC, right? 1,300 crore ka to material procurement hai. That is directly we are procuring at SPV level. So all project size become more than what otherwise the order book we are having, right?
So 1,300 crores ka jo material ka revenue, that will not come in the standalone entity?
No. That is not the revenue. That would be kind of expenses which will be incurring in the SPV directly. That won't be revenue of the year, right? Okay. See, kya hota hai? Transmission mein kaafi bada major part is basically material procurement. This is equipment, transformer lena hai, sab lena hai. So that is not generally we are counting in the revenue.
इसके अकाउंटिंग कैसे? दिस 5,000 करोड़ आपके ऑर्डर बुक 2,700 प्लस 1,300 करोड़ इज राफी 4,000 करोड़ इसका
4,000 करोड़ और 1,000 करोड़ अपन ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं. फॉर दैट रीजन वी हैव पुट इन दैट मच ऑफ इक्विटी, राइट? सो फार, राइट? सो पेंडिंग ऑर्डर इज 4,000 करोड़, राइट? बट 4,000 में से ईपीसी रेवेन्यू वुड बी 2,800 करोड़ ओनली.
बट रेवेन्यू तो पूरा आपको दिखाना पड़ेगा ना, 4,000 करोड़ का सर. तो कैसे? तो
सर वो एसेट बना, सी इट इज एसेट आई एम क्रिएटिंग ओवर देयर.
So ये अगर अपन ये देखेंगे कंसोल लेवल पे दैट इज नॉट द रेवेन्यू बिकॉज कंसोल लेवल पे तो मैं मेरे एसपीवी से रेवेन्यू मिल रहा है ना मेरे को
दूसरा पूछना था सर अभी ये सारा 2700 इन हाउस होगा एग्जीक्यूशन स्पेशली सर टावर ट्रांसफॉर्मर आई अंडरस्टैंड यूर परचेजिंग बिकॉज यू डोंट मैन्युफैक्चर इट बट स्पेशली ऑन द स्ट्रक्चर साइड सिंस यू हैव सम यू डू सम स्ट्रक्चरल वर्क फॉर द हाईवे तो यहाँ पे टावर्स हो गया ऐसा कुछ आप इन हाउस कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो आउटसोर्स्ड एंड एनी प्लान्स ऑफ लाइक इनकरिंग टावर केपेक्स फॉर केपेक्स फॉर टावर मैन्युफैक्चरिंग और कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग
टावर मैन्युफैक्चरिंग वी आर हैविंग इन हाउस कैपेबिलिटीज हम लोग कर भी रहे हैं विल बी यू नो प्रोक्योरिंग इट इन हाउस ऑल्सो और बाहर से भी लेंगे बिकॉज रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है तो वी हैव टू प्रोक्योर फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एंड कंडक्टर वी आर नॉट टारगेटिंग एनी मैन्युफैक्चरिंग एज ऑफ नाउ राइट एंड यस बाकी ईपीसी तो हम कर ही रहे हैं
एंड इसमें अभी क्या कैसे देख रहे हैं ग्रोथ का बिकॉज अभी 5000 करोड़ का आपका टोटल एसेट बेस हो जाएगा देन इसके बियॉन्ड आप कैसे देखेंगे इसको लाइक एवरी ईयर इज देयर 2-3 प्रोजेक्ट्स यू आर टारगेटिंग एंड हाउ डू यू मोनेटाइज इट बिकॉज यू ऑलरेडी हैव वन एसेट व्हिच इज ऑपरेशनल नाउ सो हाउ डू यू लुक एट मोनेटाइजिंग इट
सो ईयरली आई मीन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ऑल्सो फिर जैसे करंट ईयर में भी अपन ने अभी तक 3000 करोड़ का एक ऑर्डर लिया विल बी टारगेटिंग अनदर टू सो फॉर नेक्स्ट टू ईयर्स एटलीस्ट आई वुड से नेक्स्ट 2-3 ईयर्स विल बी टारगेटिंग 5-8000 करोड़ ऑफ द ऑर्डर्स फ्रॉम ट्रांसमिशन और व्हेन आई एम सेइंग 5-8000 दैट मीन्स एक्सक्लूडिंग दैट मटेरियल एटलीस्ट सो हमारा क्या होगा रेवेन्यू वुड बी बेसिकली गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी हैविंग एटलीस्ट 2-3000 करोड़ ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम कमिंग इन फ्रॉम ट्रांसमिशन सेक्टर Right and as we are progressing right as of now we have you know total asset base of around 6000 crore जो अपना transmission में हो गया है maybe another one of next one and a half year अभी so far we are having only one project which is complete right in our portfolio and we are expecting in that in next 6 months of time maybe another 2 more projects will be you know completed. तो एक साइजेबल होने के बाद में सडनली विल एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजिंग दोज एसेट बाय वे ऑफ आइदर डूइंग इन वेट और टू टॉक टू सम इन्वेस्टर्स राइट फॉर सेलिंग दिस पर्टिकुलर एसेट्स एंड ऑल दैट सो व्हाट वी बिलीव इज दैट एनफ डिमांड इज देयर फॉर दीज एसेट इन द मार्केट एंड विल बी एबल टू सेल इट इजिली
This last one question to Ajinder ji on a broader infra theme. So sir, last 2 साल से हम लोगों ने एकदम slow down देखा है sector में अभी government का focus भी GST cuts के साथ थोड़ा consumption में दिख रहा है और जो pipelines हमारी push out हो रही है especially on the NHAI which has been one of the large ordering segment. So order has moved out as of now looks to have moved out from there. Even the water side JJM has been struggling and kind of as a theme there has been issues around the collections even in railways people are like taking a calibrated approach to hum matlab abhi transmission hi ek hi theme dikh rahi hai jo abhi thodi promising dikh rahi hai so abhi hum kaise dekhe matlab kya confidence aap de sakte hain aap because you work on the ground you talk to the policy makers in industry so do you think infra is now Not immediately government's priority or is more like consumption. हम कैसे सोचें इस चीज को? Because this is one question which been grappling with कि ordering पे क्या view है, especially on the domestic side. और export पे आप कुछ देख रहे हैं, उसको mitigate करने के लिए आप export market देख रहे हैं क्या? कैसे मतलब इस चीज को कैसे balance out करें?
इसमें government ने क्या है कि जो जिस तरह से infra पे जो expenditure किया है तो इनिशियली तो काफी अच्छा रहा लेकिन बीच में क्या कुछ क्वालिटी के भी इश्यू आए तो उसकी वजह से रिस्ट्रक्चरिंग इन बिटवीन चल रही है गवर्नमेंट की लैंड एक्विजिशन के भी काफी इश्यूज रहे हैं उसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है प्रोजेक्ट क्वालिटी एग्जीक्यूशन जो डिलीवरी ऑफ क्वालिटी है उसके ऊपर कुछ इश्यूज आए तो उसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है अभी मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी तो काफी अच्छी रहेगी पावर ट्रांसमिशन में पावर में आप देखेंगे तो काफी बड़ा मतलब रिक्वायरमेंट आ रही है रेलवे साइड में भी अभी मेट्रो की रिक्वायरमेंट हर सिटी के अंदर आ रही है इसी तरह से हाईवे में भी काफी कुछ बिजनेस अगले साल मतलब इस साल के लास्ट और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने पार्ट पर अपन ये देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही अपने लिए अपॉर्चुनिटी तो काफी अच्छी रहने वाली है एक्सपोर्ट के लिए हम लोग नहीं देख रहे हैं बाहर अभी तो कम से कम इंडिया में ही फोकस है और इंडिया ग्रोथ स्टोरी में ही पार्टिसिपेट करते हुए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि साथ साथ में कुछ मैन्युफैक्चरिंग की भी अगर अपॉर्चुनिटी आई तो देखनी चाहिए जैसे पावर ट्रांसमिशन में हो चाहे मतलब टावर में हो चाहे कंडक्टर में हो इस तरह की फैसिलिटी को बनाते हुए और इसी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन को करते हुए एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी बन सकती है आने वाले टाइम।
ठीक है, ठीक है, आई एम डन विद द क्वेश्चंस आशी। आई मीन आई थिंक सर देयर इज नो फर्दर क्वेश्चन ऑन द क्यू, सो आई वुड लुक फॉरवर्ड टू एनी क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम योर एंड देन कैन क्लोज द कॉल।
Thank you, all the people, all everybody who has joined this call. Thank you for the continued support which investor has given us. Our company will certainly try to do more and more, and try to do and try to participate with the government initiatives. Thank you.
Thank you, Prakashji.
Thank you, sir. On behalf of HDFC Securities Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your line.